प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, भाग चौथा, लेक्चर नंबर 267। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सौवसाहु सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मणे ब्राह्मण करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरी शेष तीर्थं कर अने सौ सिद्ध शुद्धासी त्वने मुनि ज्ञान दुर्ग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वरी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सिद्धने नमस्करण करिये रीते गणधर आने अध्यापकों ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनी जे नाति शिव प्राप्ति वने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये चौथी पुस्तक है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 42 पर आ गए, 42 ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ गुण पर्याय की बात जो है वो पट के दृष्टांत के द्वारा, पट यानी वस्त्र कहते हैं। पट के दृष्टांत से प्रथम कहते हैं कि पट अपने गुण पर्याय में तन्मय है। यहाँ तो बताना है प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय से तन्मय होता है, तन्मय उसमय होता है, तत्मय तत्कान होता है तन्मय। वैसे प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय में तन्मय है, पर के साथ कोई संबंध है नहीं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ है ना, प्रत्येक वस्तु कहने से प्रत्येक परमाणु जुदा जुदा है, प्रत्येक आत्मा जुदा जुदा है, एक एक द्रव्य जुदा है। वो अपने गुण पर्याय के साथ तन्मय है, पर के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। यह शरीर जो जड़ मिट्टी है उसके साथ आत्मा का कोई संबंध है नहीं। शरीर द्रव्य है तो वह उसके गुण और पर्याय में शरीर तन्मय है, यानी शरीर का एक एक परमाणु जुदा जुदा है, परंतु अभी उनका एक पिंड बना है। उसको हम क्या कहते हैं, शरीर जो पिंड बना है उसको क्या, हाँ बहुत अच्छा, समान जातीय द्रव्य पर्याय। वहां जीव को वहां देखकर उसको असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहने में आता है, परंतु फिर भी जीव जुदा है और ये सब जुदा है। तो कहते हैं शरीर अपने गुण पर्याय के साथ तन्मय है और आत्मा अपने गुण और पर्याय में तन्मय है। एक एक परमाणु है उसमें अनंत गुण है, और उसके पर्याय में परमाणु तन्मय है, उसे द्रव्य कहते हैं। ये केवल द्रव्य गुण और पर्याय को भी सही रूप से समझ में आवे तो देखो कितना, जिसको कहेंगे बिल्कुल यानी तत्वज्ञान में प्रवेश हो जावे, पूरा विश्व की व्यवस्था समझ में आ जावे। और कितनी शांति है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अरे झगड़ा खड़ा किया है स्वयं अपने विचारों में, विकल्पों में, तो कहते किसी का संबंध नहीं है तो परद्रव्य से झगड़ा तो होगा कि नहीं होगा। हमने खड़ा कर दिया अपने अज्ञान और राग के कारण। अब कुछ कह रहे हैं
यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने पर गुण पर्याय से युक्त है,
युक्त है, उसका
अर्थ
है।
ये हो गया कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन करता है,
स्वयं कर रहा है।
और हमने ऐसा सोचा कि यार ये शरीर को क्या समझता है, उसको संभाला नहीं, जरा संभालो, टेक केयर करते ना, वो क्या है फिर और तो और बता दे क्या करे साहब, कर्म का उदय आया इसलिए असाता का उदय है। तो फिर कर्म भी जुदा द्रव्य है, शरीर भी जुदा द्रव्य है, फिर भी एक दूसरे को कनेक्शन लगा लेते हैं। ये दुनिया की दुनियादारी है ऐसी, और हम उसी में अटके हुए हैं, ये मूल बात है।
अनुकूलता प्रतिकूलता भी मानी हुई है ना, अनुकूलता प्रतिकूलता मानी हुई है, उसमें अभी निमित्त रूप से कर्म का जो कुछ शास्त्र में भी बताया है, परंतु उस समय रागी द्वेषी होना, ये के कर्म ने आपको बताया रागी द्वेषी हो जावे, इसको अनुकूल प्रतिकूल तो माना हमने माना है। कर्म ने आपको जबरदस्ती नहीं किया कि ये तो, वो तो संयोग है, वो तो आपको जबरदस्ती नहीं किया कि मुझे देखकर आप अनुकूल मानो या प्रतिकूल मानो, वो तो संयोग क्या है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो तो पुद्गल की अवस्था है और पुद्गल उसमें तन्मय है, वो अपने गुण पर्याय के साथ तन्मय है, और हमने उसमें ये मेरा है, ये परका है, ये ऐसा हो जावे तो अच्छा, वो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, हमने स्वयं कल्पना की है, और वो कल्पना के अनुसार थोड़े ही परद्रव्य परिणमित होगा, वो तो अपने हिसाब से परिणमित होता है। कभी कभी अपने कल्पना के अनुसार हो गया, देखो मैंने ऐसा किया ना, मैंने ऐसा कहा ना, मैंने ऐसा किया ना, तो ये हो गया, ऐसा लगता है उसको। देखो क्या कहते हैं, एक एक परमाणु है उसमें अनंत गुण है, उसकी पर्याय में परमाणु तन्मय है, उसे द्रव्य कहते हैं। सूक्ष्म बात है भाई, यह तो धीरे से समझने की बात है, शांति से और बराबर समझ में आवे तो कहते निहाल हो जाओगे, क्योंकि द्रव्य गुण परे तो बेस है ना, वस्तु क्या है इसको समझाने की ये जो बात है, और वो केवल ज्ञानी ने जानकर बताई हुई बात है। आगे के बड़े बड़े सिद्धांत याद कर लेते परंतु द्रव्य गुण पर्याय को समझने में अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आगे के सिद्धांत कोई काम करने वाले नहीं। उसको लगता है अरे मैं तो इतने साल से पढ़ रहा हूँ, मैंने तो इतने व्रतादि अंगीकार की है, मैं तो इतना समाज में प्रतिष्ठित कहलाता हूँ, फिर भी उसके हाथ में क्या आया, कुछ नहीं आया। और द्रव्य गुण पर्याय को सही रूप से ख्याल है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है ना, बिल्कुल बेसिक है उसको, ये तो नींव है।
वो तो कहते हैं मूल में भूल है।
हाँ मूल में भूल है, तो मूल में से उसको सीखेंगे। ये प्रवचन सार अद्भुत ग्रंथ है, मैं तेरे को पहली बार जब हमने पढ़ा ना, लगातार 3 बार पढ़ा था शुरू से अंत तक। देखो क्या कहते हैं, भगवान की वाणी जिसे इंद्रों सुने।
एक मिनट, यहाँ गुरुदेव श्री हमेशा इंद्रों का काम नाम क्यों लेते हैं कि इंद्रों के हाजिरी में, 100 इंद्रों के हाजिरी में, ऐसा बताते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखा, भगवान की वाणी जिसे इंद्रों भी सुने, तो कहने का तात्पर्य इंद्र तो अगले भव में मोक्षगामी जीव है और वो भी सुनने को आते हैं, यानी देयर शुड बी समथिंग, क्योंकि वो तो इंद्र तो सभी सम्यक दृष्टि है, इसलिए उनके नाम ले लेकर बोलते हैं हमेशा आगे।
हाँ देखो, भगवान की वाणी जिसे इंद्रों सुने, समोसरण में इंद्र आते हैं, पहले देवलोक के यानी प्रथम स्वर्ग का, उसका नाम है शक्रेंद्र, और उनकी इंद्राणी जिसका नाम है शची। वैसे तो 8 मुख्य पट्ट देविया कहते, यहाँ हम पट्ट रानी कहते, वहाँ पट्ट देवी कहते, उसमें से जो शशि नाम की जो है वो तो नियम से नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाली है, वहाँ स्त्री पर्याय में उत्पन्न हुई, यानी वहाँ जाके सम्यक तो प्राप्त किया है, तो कहते शक्रेंद्र और उनकी इंद्राणी एक भवतारी है, दोनों एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। यानी वहाँ देव का पर्याय छूटेगी, मोक्ष मनुष्य में आएंगे। अभी वहाँ इंद्राणी है, यहाँ तो पुरुष होकर जन्मेगी, सम्यक दृष्टि है तो, और उसी पर्याय में उसी भव में मोक्ष जाएगी। कभी भी ऐसा कुछ है नहीं कि अमुक ही समय होता है, ऐसा कुछ नहीं आता। उनको सम्यक तो कब होता है? शशि इंद्राणी को, क्योंकि वहाँ क्या है, देवों में तो अंतर्मूर्त में कोई जीव अर्लीस्ट सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। जैसे मनुष्यों में 8 वर्ष की लिमिट है, वैसे 8 वर्ष के पहले नहीं करेगा। मिथ्यात्व तो में जन्मा हुआ 8 वर्ष के बाद कभी भी कर सकता है। वैसे यहाँ पर्याप्त हो पर अंतर्मूर्त में वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है वह जीव।
देखो मनुष्य की अपेक्षा से भी ऐसा बताया जाता है कि 8 वर्ष का बालक हो वह भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी अभी सोचो कितना समय हुआ होगा,
संयम धारण करके श्रेणी भी चढ़ सकता है।
यानी ये ऐसी जो बातें आती हैं तो वो तो शास्त्र में क्या क्या खाना खाया, कौन सी चटनी बनाई, ये थोड़ी बात बताएंगे। ये तो चक्रवर्ती है, उसका ऐसा ऐसा खाना था कि 32 कवल में से 1 कवल उनके पूरे सेना भी नहीं पचा सके।
यहाँ इसलिए बड़ो,
लेकिन उसमें क्या बना था क्या नहीं, तो अभी क्या बोले, अप्रयोजन बातों में अटकना मत। हाँ है, आगम के अनुसार हमारी मान्यता रखे, बाकी यू कैन नॉट पिन पॉइंट इट कि कभी उनको सम्यक तो हुआ होगा।
और ऐसा तो नियम नहीं है उनमें। देखो क्या कह रहे, ऐसे जो जिसको कहेंगे बड़ों का नाम लिया जाता है कि ऐसे जीव भी भगवान की वाणी सुनने को, जैसे गुरुदेव की भाषा में, अरे वो स्वर्ग में, इंद्रों को तो ऐसा लगता है कि एक समय के मनुष्य भव मिल जावे तो हम नियाल हो जावे। जब पालकी उठाते हैं भगवान दीक्षा लेने को चलते हैं तब तो मनुष्यों को वो अधिकार मिलता है, क्योंकि मनुष्य कहते हम पंचम गुण स्थान वर्ती है, हम आगे चलकर मूली बनने वाले हैं, तो देवों को तो चौथा ही गुण स्थान है। यानी ऐसे ये जो यहाँ ऐसे पुरुषार्थी जीव भी है, समय दृष्टि भी है, और भगवान के सामने कैसे बैठते हैं, तो गुरुदेव की भाषा में गलुड़िया नहीं जब। गलुड़िया क्या होता है, कुत्ते का पिल्ला। हाँ देखो यहाँ क्या कहते, तीसरी लाइन, दोनों एक भो करके मुख जाने वाले। सिद्धांत में ऐसा पाठ है, शक्रेंद्र और उनकी मुख्य रानी दोनों मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा सिद्धांत में लेख है। सिद्धांत यानी जो ग्रंथ है कर्णन योग के स्पेशली, उसमें वो आते भविष्य की जो आगाही करते हैं, कौन से जीव क्या होता है, ये कुछ नियम होते हैं कहाँ कौन से जीव नियम से नेक्स्ट भाव में मोक्ष जाने वाले। सारे दक्षिण के इंद्र है, उनके शक्रेंद्र के 4 लोकपाल है, बाकी लोकांतिक देव है, ये सारे कहे नियम से नेक्स्ट भाव में सर्वार्थ सिद्धि वाले यहाँ आकर मोक्ष ही जाएंगे सारे के सारे। बाकी नहीं जाते वो बात नहीं है, पर जो नियम से जाते उनकी ऐसी बात बताई हुई है शास्त्र में। तो ऐसा सिद्धांत मिले, वे सुनने आए वह वाणी कैसी होगी बापू। हाँ हाँ, जिन्हें एक भाव में तो मोक्ष जाना है, और अभी मतिशुत अवधि 3 ज्ञान तो है, क्योंकि देव है तो नियम से अवधि ज्ञान तो होगा ही होगा। समकिति है सौधर्म देवलोक 32 लाख विमान, उसका साहेबा 32 लाख विमान, उसका साहेबा नहीं उसके, वो इंद्र है उसका स्वामी है। वे मानते नहीं कि वह मेरा है, क्योंकि समय दृष्टि है, फिर भी वो उनके आधिपत्य में आते हैं। भगवान के देव दर्शन का राग आए तो भी उसे मानता नहीं कि यह राग मेरा है, क्योंकि वो यहाँ तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों में तो वही व्यवस्थापक करो मुख्य है कहूंगा, क्योंकि वहाँ जो पांडुक शिला पर ले जाते हैं बालक का अभिषेक करते हैं, वहाँ तो वही मुख्य है वहाँ पर सौधर्म इंद्र।
परसों एक फोन आया था, बताया मैंने शायद, मुझे याद नहीं
दिया।
वहाँ एक बहन ने फोन पूछा करके पूर्व कि आदिनाथ भगवान के समय में वो 1008 कलश ढोरते हैं, उसका जो साइज होगा, ये 8 योजन छह योजन आदि आदि, तो वैसा ही भगवान महावीर के समय में होता होगा। देखो कहाँ लोग अटके हैं अभी, उससे क्या मतलब है भाई वो 2 इंच कम हो या जास्ती हो, तेरे को क्या लेना है। यानी लोगों को किसमें इंटरेस्ट है वो समझ में नहीं आता है। तू आत्मा का
ये बाह्य चीजों में ही, बाह्य चीजों में
नहीं। नहीं मैं क्या कहता हूँ, आत्मा का अनुभव कैसा करें, हम ऐसा कर रहे हैं इसमें कुछ गलती है क्या, ऐसा कोई नहीं पूछता है।
हाँ देखो क्या कहते हैं 32 लाख।
देखो अप्रयोजन भूत बातों में ही अटके, ये जो मैंने बात बताया वो बिल्कुल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ऐसा।
रुचि भी बाहर की पड़ी है।
हाँ। यानी क्या है, किसी ने आपको प्रश्न पूछा और आपका उत्तर देने को नहीं है तो हमको पूछा, हमको इन द सेंस उज्ज्वला को, ऐसी सब बातें चलती है। अब क्या माथा मारने का उसमें।
हाँ, देखो क्या कहते हैं, समकीति तो अपने द्रव्य गुण से समकीत की पर्याय उत्पन्न हुई है, वह राग से उत्पन्न नहीं हुई, देव गुरु से उत्पन्न हुई नहीं, ऐसा मानते हैं। कि उनको सही, अगर मान्यता सही ना हो तो सम्यक तो हुआ है ना, तो मान्यता तो सही है। वो नहीं मानते कि देव गुरु शास्त्र के कारण मुझे सम्यक तो हुआ है, या मैंने ऐसे व्रत आदि किए, भगवान की भक्ति की इसलिए सम्यक हुआ, ऐसा तो उनकी मान्यता है ही नहीं, क्योंकि वो निमित्त रूप से सच्चे देवगुरु शास्त्र हो गए, फिर भी उनके कारण यहाँ सम्यक तो नहीं होता, ये मुख्य बात है।
मैं
समय दर्शन हुआ तो उसमें नियम नहीं है कि इस एज में हुआ सबको ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। मेरी पर्याय में और मेरे गुण में मैं तन्मय हूँ, ये समय दृष्टि की मान्यता बता रहे। दूसरे की पर्याय के कारण मैं अपनी पर्याय में तन्मय हूँ ऐसा भी नहीं है। दूसरे के पर्याय के कारण वो निमित्त तो वहाँ है ना, उसके कारण यहाँ हुआ तो कहता ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी खिरी इसलिए मुझे यहाँ सम्यक्त हुआ तो कहते ऐसा नहीं है। और दूसरे की पर्याय में मैं तन्मय हूँ ऐसा भी नहीं है। यह तो थोड़ा अभ्यास करे तो समझ में आए ऐसा है बापू। यानी थोड़ा शांति से सुनना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, उसके में क्या न्याय दे रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। वो एक बार समझ में, बहुत कठिन बात नहीं है, पर हम क्या कहते, कभी कभी ऊपर की बातें सुनते हैं और ऐसा लगता है या ऐसा लगता है, हमको तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। परंतु जब बेस से चलोगे, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, उसकी परिणाम व्यवस्था क्या है, किसको क्या कहते हैं, लौकिक में वे ही शब्द अन्य अर्थ में हम यूज करते हैं और यहाँ उसका अर्थ अन्य होता है, तो उसको बराबर हम क्रम से पढ़ते चले जाएंगे तो कुछ भी उसमें डिफिकल्टी है ही नहीं कुछ। अरे भगवान की नजर में तो सारे अनंत अनंत जीव है कि नहीं, अरे वो सामने वो कहाँ आंखें उसी नजर में आने वाले, वे तो केवल ज्ञान से जान रहे, कोई सामने बैठा है और कोई निगोद में पड़ा है, वो भी उनके नजर के सामने ही है ना। नजर कौन सी नजर, केवल ज्ञान की नजर। हमें क्या लगता है उसके सामने है तो वो हमके नजर, हाँ वो तो क्या है, यही तो सब अज्ञान है ना।
इसका मतलब ये होगा कि निमित्त से कार्य होता है,
नहीं,
ये
नहीं,
बात
उनको क्या
हो,
उनको क्या कहना है, भगवान की नजर हम पर पड़ी तो हम समकित लेके जाए।
वही तो कह रहा हूँ मैं कि निमित्त से यहाँ कार्य हो रहे, ये इस बात का हमने नक्की कर दिया।
हाँ
इस दिन मैंने जो प्रश्न पूछा था ना, लोग कम है इसमें सम्यक का सम्मुख मिथ्या दर्शन,
सम्यक का सम्मुख,
हाँ तो ये आपने कहा करण लब्धि में बताया, मैंने वो करण लब्धि,
करणानियोग की अपेक्षा करण लब्धि में ही उसको सम्यक तो सन्मुख कहेंगे। जैसे एक स्थूल कथन अलग होता है, जैसे क्षोभश्रम लब्धि कहाँ, किसको संगी पंचेंद्री हुआ उसको क्षोभश्रम लब्धि का, वो बात नहीं है
वो,
हाँ क्योंकि उसको
तो
नहीं, तत्व विचार में भी नहीं पड़ा है अभी, उसकी ऐसी जिज्ञासा अव्यक्त भी हो सकती है। उस काल में ज्ञानावरणादि और प्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा मंद होकर उदय में आ रहा है, और वो अंतर्मृतक ही हो सकता है। उतने काल को और वो ये चारों लब्धि होती है एक साथ है, अपन समझाने के लिए एक के बाद एक बताएंगे।
मैं अभी इस बात का जिक्र उसके विनोद जी के साथ करता हूँ। विनोद जी ने 16 साल की जब उम्र थी तब उसने मोक्ष माला लिखी। मोक्ष माला में उसने 108 पाठ लिखे और 108 पाठ में एक पाठ पे तो कुछ लग गया तो उन्होंने बहु पुण्य के रा पुण्य थी सुधुदेव मानंदो मरे वो लिखा। और बाद में उनको सम्यक दर्शन 23वें साल में हुआ। 23वें साल में उसको पूछा गया कि आपने अभी तक जो कहा है उसमें आपको कुछ सुधार करना है क्या? तो उन्होंने ये बताया कि मुझे इस बात में कोई सुधार की आवश्यकता दिखती नहीं, जो भी मैंने पत्र लिखे हैं या तो मोक्षमाला लिखी है या तो जो भी कविताएं लिखी है। 16वीं साल में उन्होंने बहुत से ऐसे लिख डाले कि जिससे ऐसा भाषित होता है कि वे उनको सम्यक दर्शन है, माने कहने था तो नहीं लेकिन है, माने उतनी उनकी जो मान्यता जो है वो उतनी क्लियर हो गई। फिर भी उनको समय कहाँ ना कहाँ सम्यक दर्शन रुका हुआ। तो 23वें साल में उनको जाके सम्यक दर्शन हुआ तब उसने वापिस एक कविता लिखी कि मुझे ऐसा सम्यक दर्शन हुआ। इसलिए इस बात को क्या है कि डायरेक्ट किसको मैं पूछना नहीं चाहता हूँ लेकिन इनडायरेक्टली मेरा यही सवाल होता है कि उनका अगर ज्ञान तो बहुत पहले स्वच्छ हो गया, काफी स्वच्छ हो गया, या तो उसमें से मोक्ष माला 108 मरकर लिखे उसमें से भी आज का ही प्रवचन में गुरुदेव ने आया था कि उतना अच्छा लिखा है। 16वीं साल में देखो
देखो क्षोभम भी है और ज्ञान की क्लैरिटी भी है और वो चलती रहेगी और वैसे और उसी ज्ञान की क्लैरिटी हुई फिर आत्मानुभव नहीं हुआ। जैसे हम जब 75 से पढ़ते गए जब से ये सुना है तब से जो जो ग्रहण किया वो बिल्कुल सही रूप से ही ग्रहण किया गया। हमारे कभी तब के भी कुछ ऐसे आपस में किसी को पत्र लिखे है वगैरह इन्होंने भी और मैंने भी तो उसमें लगता है कि कितने सटीक व्यवस्थित लिखा है क्योंकि जब जो जो कुछ ग्रहण किया वो सही रूप से ग्रहण होता गया। परंतु उसको सम्यक तो सन्मुख नहीं कि ना, हाँ वो सही रास्ते पर है, सही ग्रहण चल रहा है, ज्ञान में सहज सही का स्वीकार हो रहा है, परंतु सम्यक तो होने में कुछ काल जाता है ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कोई मुनिराज है उनके लिए तो सभी कोई सब पूर्ण मोक्ष मार्ग क्लियर है फिर भी किसी को दीक्षा लेने पर तीर्थंकरों की बात करो, मल्लीनाथ को कितने दिन लगे थे? 6 दिन में हुआ ना दीक्षा ली तब कल्याण हुआ, 6 दिन में मोक्ष सॉरी केवल ज्ञान मोक्ष नहीं केवल ज्ञान हुआ। अब आदिनाथ भगवान को हजार साल लगे और इनको बाहुबली को
एक साल।
तो क्या उनमें कोई कमी थी जानने में कुछ कमी थी?
ये तो सम्यक दर्शन किया,
वही बात वहाँ पर है, वो चारित्र गुण की है, यहाँ तो श्रद्धा गुण की बात है। यह ज्ञान सही हुआ तो तभी होगा ही, ऐसा नहीं क्योंकि वो तो अंतर्मुख जो उसका परिणमन होना है वो हो गया। पर ज्ञान में तो इतनी क्लैरिटी कि यही सत्य मार्ग है उसमें कोई शंका नहीं, इतनी तो शंका पहले बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए वाली बात नहीं। ज्ञान जुदा है और श्रद्धा जुदी है, वो ज्ञान बहिर्लक्ष्य ज्ञान में तो इतनी क्लैरिटी है, वही जब अंतर्मुख होकर स्वभाव का अनुभव करे तब जाके वो उसका आत्मज्ञान हो गया। तो उसमें जो पहले के ज्ञान में कोई वहां भूल थी ऐसी बात नहीं है क्योंकि सही था तभी तो। और उसका जो कोई अभी वो सारे विचारों की थोड़ी प्रक्रिया सारी बताएंगे, वो तो चलता रहता है मन ही मन में, उसके विचार भी चलते हैं, वो तो सालों तक चले किसी के ऐसी कोई बात नहीं। पर वो उसको सम्यक तो सन्मुख नाम करणानुयोग में नहीं कहेंगे। हाँ वो तो द्रव्यानुयोग में स्थूल रूप से किसी को कह दिया वो बात अलग है, और उनके भी देशना तो पूर्वभव की थी क्योंकि उनको ये तो 7वें साल में उनको पूर्वभव का याद आया, किसी को स्मशान में गए थे झाड़ पर से कोई देखे, तभी से जाति स्मरण में था कि जो अरहंत है वगैरह बहुत सत्य है, वो तो उन्होंने पहले ही बताया था, बचपन में ही बताया था। यानी हर एक जीव की बात अलग है, और ज्ञान हुआ तो संयुक्तता पर तो ऐसा नहीं, किसी को तो ऐसा लगता है कि उस भव में तो अंतर्मूर्त पहले तो उसने ये सब जाना देखा और संयुक्त हुआ, अभी सिंह के पर्याय में उनको हुआ, तो उनके ज्ञान की क्लैरिटी कैसे लेना। हो सकता है कि वो सादी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, नई की बात नहीं है। यानी सो मेनी अदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सादी मिथ्या दृष्टि पहले समय तो होके छूट गया है, अभी सत्ता में भी तीन प्रकृतियां पड़ी है उसकी, ऐसे भी हो सकता है, जीव तो ऐसे भी पाए जाते हैं, असंख्यात वर्षों तक तीन प्रकृति की सत्ता है, और छूट भी गया तो फिर नए से भी हो सकता है किसी को।
ये समय दर्शन को जो साहजिक कहा है,
देखो होता तो सहज ही है,
होता तो सहज माने हम चाहे कितना भी पुरुषार्थ लिए
पुरुषार्थ तर हमको लगता है सही पुरुषार्थ होता तो उसी समय होना चाहिए था, वो पुरुषार्थ केवल हमने जानने का किया, विकल्प का किया, क्योंकि जिस समय जो पुरुषार्थ है वैसी ही पर्याय होती है। राग का पुरुषार्थ किया या हमके विकल्प का पुरुषार्थ किया या इसको जो ज्ञान परलक्षी ज्ञान का विकल्प किया या उसका पुरुषार्थ हुआ, क्योंकि जो प्रत्येक पर्याय में उसके पांच समवाय है, तो उस समय उसी पर्याय का पुरुषार्थ हो रहा है, तो सम्यक तो नहीं हुआ है तो अभी उसका पुरुषार्थ नहीं हुआ था उस समय। हमें लगता है हमने इतना प्रयत्न किया, वो तो हाँ वैसा ही प्रयत्न होना चाहिए जिससे सम्यक दर्शन हो जावे, तो वैसे कैसे करना, वो करना बिना नहीं, वो तो होता तो सहज ही होता है, होने चाहिए वाली बात नहीं, वो होती ही है, जिसको सम्यक तो होता है उसके पूर्व पात्रता भी हो जाएगी, उसको सुनने में भी कोई निमित्त मिल जाएगा, ये सब अपने आप होता है, ऐसे अरेंज करके कोई बात नहीं हो सकती। कितने बात हम अरेंज करते कोई बात तो भलती कुछ चीजें हो जाती कोई भी कार्य में, अरे वो बात है वो तो सदाचार के लेवल पर है।
जैनियों
पात्रता, हाँ बिल्कुल, तत्व निर्णय करना है, और ये जो बेसिक बात है, अरे जैनी में जन्मा हुआ तो उसके 40 दिन के बालक को कान में देते हैं मंत्र नमोकार मंत्र कहकर, उसको अभक्ष भक्षण यानी जो आठ जो बात है ना, पांच उदुम्बर फल और तीन मकार का त्याग, तो तभी से होता है उसको, वो तो नामधारी जैन कहेंगे वो पालने वाले को, वो तो बेसिक है। अभी इसका भी जितने परिणाम मृदु नहीं है उसमें तत्व ज्ञान क्या सीखेगा वो, जिसको अभी जिसको के बपर को मारने के भाव है, यहाँ मालूम है अनंत युगों की हिंसा है फिर भी उसको भक्षण कर रहा है, तो उसके परिणाम कैसे निष्ठुर है। जैसे पत्थर पर बीज बोया नहीं जाता है, वैसे ऐसे कठोर परिणाम मालूम के वो सुनने बैठेगा तो भी वो अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो सही रूप उसको ग्रहण ही नहीं हो सकता है। ये तो ऐसे तो योग्यता है ही ना, और जिसको इसमें कुछ रुचि जागृत हुई है उसकी ऐसी योग्यता है, परंतु उसको केवल इंटेलिजेंट बढ़ाने के लिए नहीं, मैं इन्हें इसका ये भी अभ्यास करना है वो भी, उसके लिए उसको कोई फायदा नहीं है, ये आत्महित की दृष्टि से उसको आगे बढ़ना है इसमें। हाँ शुरुआत में तो द्रव्य क्या है गुण क्या पर्याय अभी स्वसन्मुखता तो आगे चलकर करेगा वो, परंतु उसमें पहले से लक्ष्य तो ऐसा है, मुझे तो अपने को जानना है मैं कौन हूँ, ये अंदर कहीं ना कहीं वो भले कभी किसी को व्यक्त जिज्ञासा हो, किसी को अव्यक्त रूप से अंदर पड़ी है, तभी तो इस मार्ग में आ गया है, उसको मिल भी गया है मार्ग। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो पेज नंबर 43 पर आए थे, हाँ होते है ना ऐसे भव्य अभव्य को तो होना ही नहीं होगा, परंतु भव्य भी ऐसे कितने ही होते हैं, कितना तत्व ज्ञान भी सुना है वो उसका अभ्यास भी कर रहा है कुछ है भी, तो जिसको आत्मसन्मुख नहीं होगा करण लब्धि में नहीं जाएगा वो, जाएगा यानी कुछ ऐसे सोच समझ कर जाना पड़ता है ऐसी भी बातें नहीं है, परंतु उसके वहाँ उतना ही होकर जैसे रोज सुनता है, सुनते तो अच्छा लगता है, नहीं यही करने लगे फिर वो अपने उसमें चला जाता है दिन भर, उसके विशुद्धि जो उस समय बढ़ी थी वैसी विशुद्धि होती है क्या, और ये कार्य तो विशुद्धि के काल में होने वाली है, जब तत्व ज्ञान की गहराई से एक तो सही पकड़ होनी चाहिए एक बात, अगर उसमें उल्टा पुल्टा कुछ पकड़ लिया उसने, पकड़ नहीं जानने में कुछ अन्यथा ग्रहण किया तो होने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही होने चाहिए। जैसे अब किसी भी चाबी से कोई भी ताला खुलता है क्या, ख्याल में आती है ना? तो ये है तो सहज ये सब, क्योंकि देखो हमने देखा था प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और द्रव्य स्वयं अपने अपने गुण पर्याय रूप से परिणमित हुआ है, यानी प्रत्येक द्रव्य में अपनी उस समय की योग्यता भी पड़ी है, तो उस समय का पुरुषार्थ भी वैसा सहज होगा, जो होने वाली पर्याय है वैसा ही सब कुछ सहज होगा। तो हमने अभी क्रमबद्ध पर्याय हम देख रहे हैं ना, वो कारण कार्य रहस्य में उस समय का निमित्त भी निश्चित है, पांच समवाय में तो निमित्त भी आया, उसको तो हम जबरदस्ती से ला नहीं सकते, तो वो कैसे आया, उसका वैसा परिणमन कैसे हुआ, सहज होता है। यानी सहजता का ख्याल आना या उसका निर्णय करना यही पुरुषार्थ है, कि द्रव्य अपने गुण पर्याय से युक्त है, वो प्रत्येक पर्याय अपने द्रव्य से स्वयं अपने काल में होती है, प्रत्येक द्रव्य के अनादि अनंत पर्याय, एक एक पर्याय सुनिश्चित है, पर्याय सुनिश्चित है, उसके पांच समय भी सुनिश्चित है, वही होने वाला है। उसी निमित्त की उपस्थिति में हमने याद किया ना कि खाली संडे को बोलने के लिए याद किया, जिस द्रव्य की जो पर्याय है ना, जिस क्षेत्र में जिस समय में जिस निमित्त की उपस्थिति में जिस पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होने वाली, वो जैसी वो भूल जाते लोग, उसी द्रव्य की वही पर्याय वो सब लगा लो, तो ये सब कुछ निश्चित है। इतना जो हम अगर उसको सही रूप से स्वीकार करेंगे तो अभी क्या रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई करने धरने की बुद्धि नहीं, ना अपने को पर्याय में हेरा फेरी करना है और ना करके, समय दर्शन हमको होना है तो बिल्कुल होगा ही होगा, पर वो समय दर्शन के पर्याय की तरफ देखते देखते होगा कि स्वभाव की तरफ देखते हैं, हमें महिमा महिमा तो केवल उस पर्याय की आ रही है, पर जिसमें जिस द्रव्य से मुझमें ये पर्याय निकलने वाली है, तो मेरी जो अनंत सामर्थ्य है, अरे केवल ज्ञान लेने की पाते थे हम, खाली एक समय दर्शन को हमने अपना ध्येय बनाया, गोल बनाया, तो ये जो बताए सहज है वो द्रव्य की सहजता, यानी द्रव्य का स्वरूप अगर ख्याल में आते हैं वो होता है, तो सहज होता तो द्रव्य से ही है, होता तो सहज है, सब कुछ निश्चित है ना, तो वही होने वाला है जो उस पर्याय क्रम में है, वही होने वाला है। भगवान ने देखा इसलिए नहीं, वो द्रव्य में ताकत है कि उस समय उसी पर्याय रूप होने की शक्ति उसमें विद्यमान, ऐसी अनंत शक्तियां हैं कि अपना कार्य वो भाव शक्ति अभाव शक्ति आपने उसका सुना होगा, तो सब अपने स्व समय पर उसी पर्याय रूप से बिल्कुल निश्चित रूप से वो परिणमित होगा ही होगा द्रव्य, यानी कितनी कितनी अनंत गुण क्या हो सके, हमें दो पांच गिने 100 गिने होंगे तो भी मुश्किल से गिन पाओगे आप, और क्योंकि द्रव्य कायम टिका हुआ है, अपना स्वयं का कार्य स्वयं कर रहा है, उसमें सभी कुछ सेल्फ सफिशिएंट सब कुछ है, तो हम तो इतने पराधीन अपने को मान के बैठे कैसे होगा क्या होगा, है ना? यानी ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप निश्चित करेंगे तो ये कोई प्रश्न ही नहीं उठेंगे, यानी इतना निशंक ऐसा अंदर से निर्णय हो जावे कि बस यही वस्तु स्वरूप है और कुछ है ही नहीं है, ऐसा होगा तो क्या वैसा होगा, ये तो विकल्प फिर नहीं होते हैं, अभी कहीं ना कहीं डामाडोल है तभी ऐसे ऐसे अन्य अन्य विकल्प होते रहते हैं। देखो तीसरी लाइन में 43 पेज, यह तो थोड़ा अभ्यास करे तो समझ में आवे ऐसा है बापू, वीतराग मार्ग जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ का कहा हुआ मार्ग कोई अलौकिक मार्ग है, दुनिया में कहीं है नहीं, क्यों कहा, क्योंकि सर्वज्ञ वीतरागी ने बताया हुआ है, ऐसा कोई अन्य मार्ग नहीं है, जैन परमेश्वर के अलावा कहीं धर्म है नहीं, अभी तो जैन में जन्म हुआ उसे भी खबर नहीं कि द्रव्य क्या और गुण क्या है ना, और बाकी बड़े बड़े नाम लेकर बड़े बड़े जो कुछ फंक्शन करता है, मंदिर बनाता है और क्या क्या करता है, दान देता है, यात्राएं निकालता है, तो उसको ये पता नहीं कि द्रव्य क्या और गुण क्या है। बात अच्छी आई है भैया, सवेरे भी अच्छी आई थी, हिंदी में लेने को कहा ना, इसलिए हिंदी चलता है, जब आते थे कोई हिंदी भाई तो उनको विनती की जाती थी, खास रामजी भाई भी बताते थे हिंदी में बोलना करके, जैसे पट वस्त्र दृष्टांत, तो देखिए वस्त्र जो द्रव्य है उस वस्त्र के वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है, क्योंकि वो पुद्गल है तो उसके गुण है और उसकी सफेद आदि पर्याय है। वर्ण ये गुण है और सफेद काला पीला नीला जाए वो उसकी पर्याय होती है।
एक बात निश्चित करनी है,
हाँ?
हमको गुण कभी दिखता ही नहीं है।
हाँ जी,
हमको दिखते वो पर्याय।
अभी हम लड्डू खाए
तो उसका रसगुण ख्याल में आता है या मीठापन ख्याल में आता है, है ना? तो कोई भी पुद्गल की पर्याय रूप से हम उसको पहचानते हैं।
हम कहते हैं वो
पुद्गल
गुण वर्ण ये गुण है, सफेद जैसे रंग कहो, सफेद वर्ण ये सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग, रंग कह रहे हैं, रंग की पर्याय।
ये देखो जो पुद्गल द्रव्य है उसके चार गुण आपको मालूम है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो स्पर्श गुण की कितनी पर्याय है, सुन रस गुण की कितनी पर्याय है, गंध गुण की कितनी पर्याय है, वर्ण गुण की कितनी पर्याय। ये जब हमारे ज्ञान का विषय होगा तो हम तो पर्याय को ही देख रहे। क्यों अभी तक नहीं आया ऐसा कह रहे? कोई बात नहीं, अभी तो आया ना। देखो हम इसको ये क्या बोलते हैं, सोफा ऐसा दाबते हैं तो सॉफ्ट लगता है, यानी उसका स्पर्श कैसा है, मुलायम है, कठिन नहीं है। तो वो जो मुलायम लग रहा है तो वो मुलायम क्या है,
स्पर्श गुण की पर्याय।
स्पर्श गुण की पर्याय है। जैसे किसी छोटे बालक को देख के पारसी लोग बोलते हैं आपस में, अरे कटलो मिठो चे, कटलो मिठो चे, ऐसे गाल को पकड़। तो मिठो क्या है, ये मीठा जो है, यानी जिसको हम इतने खट्टा मीठा कड़वा कशायला चरपरा, ये पांच जो पर्याय है वो रस गुण की है, ये पहले हमें याद होना चाहिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं वो बात ख्याल में आती है।
ये पुद्गल जो है तो उसके हमें अभी ये हाँ देखो अभी ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्लिप है, हाँ ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर बताया, कलर यानी वर्ण ये उसका गुण है और उसकी अवस्था क्या है, ये लाइट जो कुछ ग्रीन कलर है, हाँ ये लो जो अभी हमने इसको कुछ अलग हो गया, जल गया तो क्या हो गया, काला हो गया। वर्ण कायम है कि नहीं, हाँ। पर्याय क्या हो गए, अभी ग्रीन है वो काली हो गई, पुद्गल का पुद्गल रहा, पुद्गल बदल कर कुछ नहीं हो गया। आप कहेंगे अभी तो ऐसा दिख रहा है वो तो गोला हो गया, जलाया तो एकदम, तो पुद्गल का तो पुद्गल है, उसका वर्ण है, उसका गंध है, उसका रस है, वो कायम है, परंतु उसकी जो पर्याय है अवस्था है वो बदल गई। हम हमेशा सोने पर घटित करते हैं, सोना हमारे 10 पीढ़ी से हमारे घर में, कभी उसका हार बनाए, कभी उसकी बंगड़ी बनाए, कभी उसका और क्या बनाए अलग अलग, तो उसकी अवस्थाएं बदली परंतु सोना तो वही था। यहाँ वस्त्र पर घटित करें, दृष्टांत क्या है, वर्ण में गुण कौन से, वर्ण गंध रस स्पर्श, उसकी अवस्थाएं बदलती, वो एक के बाद एक होगी। अभी सफेद है फिर कहते वो कालांतर में वो तो ऐसा मलिन दिखने रहा, काला जैसा हो गया, वो सफेद एकदम चकाचक सफेद नया था वो बदल कर पीला पीला जैसा लग रहा, तो क्या है वर्ण है कि गया, हाँ उसकी अवस्था चेंज हो गई। जैसे जब नया लाया था तो कैसा स्टिफ था, अभी कई कुछ दिन वो तो थोड़ा नरम हो गया, तो उसकी वो अवस्था बदल गई। देखो क्या कहते हैं, फिर पढ़ती हूँ, ये वस्त्र पट वस्त्र दृष्टांत तो देखिए, नया पैराग्राफ है वहां से पढ़ रही। वस्त्र जो द्रव्य है उस वस्त्र के वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है और उसकी सफेद आदि पर्याय है। पहला वर्ण गुण लिया था ना, इसलिए सफेद आदि की, गंध में सुगंध दुर्गंध आदि, रस में खट्टा मीठा कड़वा कशायला चरपरा, स्पर्श गुण में उसमें हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, उसमें से कोई उसके चार में से स्कंद है तो उसमें अवस्थाएं बनेगी चार। तो कहते के आदि पर्याय है, उस गुण पर्याय में, गुणों में और पर्याय में वस्त्र एटले द्रव्य तन्मय है, उसमय है। हम कहेंगे वो तो रुमाल सफेद है कहेंगे हम, वस्त्र ने हमने रुमाल की बात की, रुमाल सफ़ेद है, मंत्र रुमाल सफ़ेद है, वो सफ़ेद वो वर्ण गुण की पर्याय है, तो वो रुमाल उस समय उस रूप है ना, वो तो उससे तन्मय है, वो सफ़ेद उसका ही गुण कहलाएगी, उसका ही पर्याय कहेंगे हम। द्रव्य इतने में है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ यानी सभी पदार्थ, संपूर्ण एक पूरा ऐसा नहीं लेना, सभी पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ यानी अनंत पदार्थ, जितने भगवान ने कहे वे सब, भगवान ने कितने कहे कि जितने जाने वे सब, क्योंकि कुछ तो जाने कुछ रह गए जानने से, ऐसा है क्या, तो ऐसा नहीं है, यानी विश्व में जितने हैं वे सब भगवान केवल ज्ञान में जानते हैं, तो वे पर्याय में तन्मय है, लोकालोक में तन्मय नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं, भगवान की अवस्था कौन सी चल रही है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूप जानने की पर्याय चल रही है, तो भगवान जो द्रव्य है वो किसके साथ तन्मय, तो केवल ज्ञान के साथ तन्मय है, केवल ज्ञान में जो लोकालोक जानने में आ रहा है उसके साथ तन्मय नहीं है, लोकालोक तो ज्ञान के बाहर पड़ा, और यह भगवान अपने केवल ज्ञान पर्याय रूप से तन्मय है, परंतु जो जानने में आ रहे पदार्थ जो है बाहर के, उसके साथ वे तन्मय नहीं है, वो तन्मय नहीं होकर जानते, इसी को नहीं जानते भी कहने की बात है, नहीं जानते हैं व्यवहार से जानते हैं, तन्मय नहीं होते इसलिए उसको व्यवहार से जानते, ये कहने की पद्धति है। क्या कहते हैं, भगवान जिस केवल ज्ञान में तीन काल तीन लोक को जानते हैं, वह पर्याय जो है, देखते हैं जानते हैं एक ही अर्थ में लिया है, वह पर्याय जो है वह अपने द्रव्य गुण से उत्पन्न हुई है, भगवान का जो जीव द्रव्य है उससे वो केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है, और इस गुण और पर्याय में आत्मा तन्मय है। अभी हमारी जो पर्याय चल रही है उसके साथ अभी हम वर्तमान में उसके साथ तन्मय है, है ना? तो सम्यक दर्शन की पर्याय कहाँ से निकलेगी, बाहर से, भगवान ने जिसको देखा उसको आएगी क्या, कहाँ से होगी, अपने द्रव्य में से आएगी, अपने द्रव्य गुण में से आएगी, तो इस गुण और पर्याय में आत्मा तन्मय है। तीन लोक यानी लोकालोक, तीन लोक कहेंगे उसका मीनिंग क्या है, लोकालोक, लोक और अलोक सब देखते हैं, उसमें यह पर्याय तन्मय नहीं है, यानी उस ज्ञान के जो ज्ञेय है वो ज्ञेय, हाँ, परंतु यहाँ तीन लोक तीन काल जब कहते सामान्य से तो लोकालोक समझ लेना, उसमें यह पर्याय तन्मय नहीं है। ऐसी सूक्ष्म बातें हैं बापू, थोड़ा अभ्यास करना चाहिए भाई, आहा, ऐसा समय कब मिले, ऐसा समय नहीं, इतना सुंदर अवसर मनुष्यपना मिला है और इतना उत्कृष्ट उपदेश अभी तक अवेलेबल है, क्योंकि भगवान महावीर हुए तो इतने साल हो गए, फिर भी वो सही जो उपदेश है जो अपने कल्याण के कार्यकारी है वो अभी भी अवेलेबल है। कुंदकुंदाचार्य ने लिखा तो 2000 साल पहले, अभी 2000 साल किसको कहते हैं, और तो वो बात अभी तक हमारे अवेलेबल है, उसको समझाने वाले ज्ञानी मिले गुरुदेव के समान, है ना? तो कहते परंतु उसको निमित्त कब कहेंगे, जब हमने समझा तो, नहीं तो उन पर निमित्त का भी आरोप नहीं आएगा। देखो आपका प्रश्न ऐसा है, दिव्य ध्वनि सबको समझ में आती है तो समझाने के लिए कोई चाहिए वाली बात है, चाहिए वाली बात है, निमित्त होते हैं, हमने देखा प्रत्येक कार्य में निमित्त होता है, तो कौन सा निमित्त, जो भगवान की वाणी है, जो उनकी परंपरा से चली आई, जो सत्य बात है, जैसे मिथ्या दृष्टि होने के लिए अनादि से चला रहा है, तो मिथ्यात्व में से जब सम्यक तो होगा तो ऐसे अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, सही ज्ञान हो जाएगी।
एक 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 मैं
समझा, उनका प्रश्न क्या है,
इनका ऐसा कहना है दिव्य ध्वनि जो खिलती है तो वहाँ जाने वाले सर्व जीव तो
क्या अपने अपने
बोल रहे वो समझते हैं, हाँ। तो उनको सम्यक तो क्यों नहीं होता ऐसा,
नहीं नहीं वहाँ कहाँ वापस समझाने की जरूरत पड़ती है, वो डायरेक्ट सुनकर भी कोई ग्रहण करते ना, अभी वो ग्रहण करते तो कौन भगवान के सारा विभूति देख रहे उसमें मग्न है, कोई सुन तो रहे है पर लक्ष्य कहाँ है, अरे वहाँ क्या क्या है, कौन कौन आए, कौन कौन सुन रहे है, कौन से, हाँ वो इधर उधर उसी की महिमा आ रही है। कोई चलो घर वाले ले गए इसलिए चले गए है, और वहाँ तो जाते जाते कितने बाहर ही अटकते हैं, क्योंकि वहाँ समोसरण के पूरा वर्णन पढ़ोगे ना तो इतनी बाहर की अद्भुतता, तो वो तो अनेक अनेक चीज है। यहाँ भी कोई होता है ना तो मेला लगता है, तो बाहर कितने शॉप्स लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, खिलौने वाले होते हैं, वो जादू दिखाने वाले होते हैं और क्या क्या होता है, तो उसी में कोई चक्कर लगाते रहते हैं, अंदर जाके सुनने को थोड़े ही बैठेंगे। अभी हम मंदिर में दर्शन करने कितने आते हैं और स्वाध्याय में कितने बैठते हैं, और स्वाध्याय तो चलता है ना तब भी वे दर्शन करके चले जाते हैं।
वो जो भोजन होते हैं कौन सा स्वामी वात्सल्य भोजन,
हाँ उसमें पहुंच जाते हैं,
कितने बैठते हैं,
पूरा गांव होता है। ऐसा ही है, ऐसा ना कोई देखने, हाँ बड़े बहुत बड़े हैं, चलो दर्शन करने जाते। तीर्थंकरों की बात छोड़ दो, जो स्वामी जी थे और यहाँ क्रॉस मैदान में वगैरह उनके तो 15-15 दिन के प्रोग्राम होते थे, तो हमारे कितने रिलेटिव आते, चलो दर्शन करने जावे, महापुरुष है। अरे दर्शन करने से क्या होने वाला है, देखने से थोड़ा ही तुमको कुछ मिलने वाला है, वो क्या कहते हैं वो समझ कर सुनकर फिर अपना फॉलो करे तो कल्याण होने वाला है। ऐसे बहुत सारे आते थे, चलो दर्शन करेंगे दर्शन करेंगे,
और बाहर से वो आते थे हमारे,
नहीं पुद्गल नहीं, भले वाणी भी पुद्गल है परंतु वो समझ में तो अबे क्या कह रहे हैं और उस कहने का मीनिंग क्या है, और इतने लोग पागल, लोग पागल की तरफ क्यों इतने हजारों लोग वहां जा रहे हैं, ऐसा तो सोचता है ना। पहले जाने वाले को भले नहीं समझ में, कुछ तो चीज है जो मुझे समझने लायक है, इतना तो अंदर से हो सकती है ना क्यूरियोसिटी कि मुझे क्यों नहीं समझ आया था, मुझे भी समझना है। जैसे बच्चे भी छोटे, मुझे भी स्कूल में जाना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी डॉक्टर होना है, ये होता है कि नहीं अंदर, तो इससे ये तो अभी जिसकी रुचि हो जिसकी होनहार है वो सब सहज होता है, वही आएगा जिसकी होनहार है, अभी वो सब जबरदस्ती तो किसी को किसी कोई चीज में नहीं कर सकते। सुनने वाला भी वही सुनता है जिसको वो अच्छा लगता है, जिसको वो करना चाहता है वही करेगा, सुनते तो सब है भगवान की, आपने कहा ना भगवान की वाणी तो सब सुनते हैं, पर उस रूप परिणाम तो वही है जिसके होनहार है, बाकी सुनकर चले जाते, हाँ हमने भगवान को सुना, क्या सुना।
वो हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ कि हम आपके घर में आए तो आपने अपने बच्चे को बेटे को बोला, छोटा था ना 7-8 साल का, जा बेटा पानी लेके आ, तो 2-3 बार बोला तो सुनता ही नहीं है, थोड़े क्या सुन नहीं रहे क्या, हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, क्या आपने पहले बोला जा बेटा पानी लेके आ, अरे पानी लाने को बोला ना तुमको लेके आ, अभी बोलते क्या समझ में नहीं आता, इतनी बार बोला तो उसने सुना कि नहीं सुना। वैसे ही भगवान के समोचरण में हम एक नहीं दो ने अनंत बार गए, पर उन्होंने जो बताया वो सुना किधर, केवल इस कान से सुना उस कान से छोड़ दिया, ऐसी बात हो रही है, नहीं तो अनंत का अनंत बार गए थे ऐसा क्यों कहेंगे।
हाँ हाँ तीन लोग सूक्ष्म बातें की वहां आते हैं ना, ऐसा समय कब मिले, यहाँ तक आए थे मिला क्या, मनुष्य अपना अनंत काल के बाद मिलता है। अभी तो करना नियोग में देखो तो कितनी कितनी विशेषताएं सब डिटेल बताया जाता है, छोड़ाला में तो ऐसे कहा, छोड़ाला में कि निगोद में से निकलकर दो इंद्रिय लट हो तो भी चिंतामणि रत्न प्राप्त तो होने के बराबर है, यानी एक इंद्रिय पर्याय छोड़कर द्विंद्रिय पर्याय प्राप्त तो होना वो क्यों होगी, उसके अपने परिणाम से होगी, वहां पर भी निगोद में रहते हुए भी पुण्य पाप चलता रहता है, और आयु का बंधन का अवसर आया तो एक इंद्रिय की आयु बांध लेता है, पंचेंद्रिय जाति को कभी बांधी नहीं, ऐसा नहीं था, हर अंतर्मूर्त बांध रहा था, हर अंतर्मूर्त में वो मनुष्य गति बांध रहा था, पर आयु बंधने के अवसर में तिर्यंच आयु बांधी, लब्धि और निगोद की बांधी, वो सब उसी टाइप के वो बांधे, तो उसी में भटकता रहा, तो उसमें से द्विंद्रिय पर्याय मिलना भी कहते कि दुर्लभ है, कैसा दुर्लभ, चिंतामणि रत्न प्राप्त हो ऐसा दुर्लभ है, ऐसे छड़ाला में पाठ है, चिंतामणि तो मनुष्यपना और उसमें जैन में जन्म। देखो ये ना ऐसा कोई अद्भुत अवसर आया है कि ये जैन मनुष्यपना मिलना दुर्लभ है। अब कहाँ का कौसा मनुष्य होता, हम इतने मनुष्य देख रहे हैं, जैनी कितने हैं और जैनी इतने हैं, उनमें से सुनने वाले कितने, उसकी रुचि वाले कितने हैं। रुचि है मगर वो सही जिसको मिल रहा है, क्योंकि रुचि से जाते आत्मकल्याण की दृष्टि से, और उनको सुनाने वाले भी कितने अलग अलग मिलते हैं। तो ये पूरा ऐसा अवसर प्राप्त होना महाभाग्य का उदय हुए बिना नहीं है ये कह रहे देखो। और उसमें भगवान की वाणी का श्रवण हो, ये भगवान की वाणी डायरेक्ट आ रही है ना, भले ज्ञानियों के परंपरा से आ रही है परंतु मूल बात अभी कायम है इसमें। महादुर्लभ है। हाँ यहाँ तो कहते हैं कि जैसे पेट अपने पट 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 जैसे पट अपने गुण पर्याय में तन्मय है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ यानी सभी द्रव्य द्रव्य नामक अवस्थाई विस्तार सामान्य समुदाय से, अवस्थाई नित्य कायम रहने वाला, गुण कैसे कायम रहने वाले है गुणों का समूह है, और दौड़ते हुए आयत सामान्य समुदाय यानी पर्याय कैसे एक के बाद एक होने वाली, उसको कहते दौड़ता हुआ आयत सामान्य, इसको प्रवाह भी कहने में आता है, उससे रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है। सभी पदार्थ कैसे है तो द्रव्यमय है, यह द्रव्य की व्याख्या कही। अब गुण व्याख्या गुण की व्याख्या कहते हैं वो तो कल देखेंगे हम, परसों सोमवार को। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। तारावीन Thank you.